वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं 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 हरि
नारायण 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 बोलो महाराज प्रमो क्या आज्ञा होती है बोलो क्या सुना
आपके मन में
हमारे मन में आई वो सुना देंगे हमारे मन में आई है ऐसी बात इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं है कितना भी रति मात्र संदेह दिल नहीं सच्ची बात है ऐसी ऐसी बातें मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है इस जीवन में महान आनंद प्राप्त कर सकता है पुण्यात्मा हो पापात्मा हो विद्वान हो पढ़ा लिखा हो बिल्कुल अपढ़ हो बुद्धिमान हो चाहे बुद्धि कम हो अब बात ऐसी है अली बात महान सुखी हो सकता है इसमें संदेह नहीं है अब एक बात बताएं आपको इस जीवन में महान सुखी हो सकता है मनुष्य मात्र भाई हो बहन हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सनातनी हो बौद्ध हो चाहे मुसलमान हो अंग्रेज हो कोई कौन हो महान आनंदित हो सकता है इसमें संदेह की बात नहीं है ऐसी बातें मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है हमारे घर की नहीं है उन बातों में एक बात आज विशेषता से कहता हूं ये जो हम सुखी दुखी होते हैं ना ये गलती है हमारी उसमें गलती क्या है तो लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषाद राजगुरु से कहा है सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहं करोमि वृथाभिमान स्वकर्म शुद्धो ही लोक रामायण में कोई सुख दुख करता था कोई सुख दुख देने वाला नहीं है निज कृत कर्म भोग सुभ्राता ये उसी रामायण में उसी प्रसंग में आता है सुख दुख देने वाला दूजा कोई है ही नहीं ये खास बात है ये सूत्र है खास और दुख दूसरा देता है ये कुबुद्धि है कुत्सित बुद्धि है खोटी बुद्धि है इसका त्याग कर देना चाहिए कि दूसरा कोई दुख दे सकता ही नहीं महान दयालु सर्व समर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के रहते हुए कोई किसी को दुख दे दे संभव नहीं है परम दयालु सर्व समर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के जीते जीते कोई किसी को दुख दे दे हो नहीं सकता इस वास्ते दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं ऐसे सुख के लिए अहंकारों में इति प्रथा अभिमान मैं कर लेता हूं यह अभिमान प्रथा है कोई सुखी नहीं कर सकता कोई दुख दे नहीं सकता और अपने सुख कर ले ये आज की बात नहीं है स्वकर्म सूतक ग्रहता पहले किए हुए कर्मों से ये अपना जीवन ग्रसित है गूंथा हुआ है वो जैसे जैसे कर्म किए हैं वो वैसी परिस्थिति आवेगी। तस विपाको जात्यायुर्भोग, योग सूत्र में आया है जन्म आयु और भोग ये अपने किए हुए कर्म का फल है। तस विपाक का फल बताया, जन्म होना और आयु प्राप्त करना और सुख दुख का आना, ये कर्म का फल है। ये पातंजल योग उसने माया है। अब जो सुख दुख होता है इसमें एक मर्म की बात मेरे को मिली है, मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। वो ये है कि परिस्थिति है वो तो भोग बताया ना, जन्म होना, उम्र होना और भोग होना, तो भोगना सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। सुख दुख का साक्षात ज्ञान होना इसका नाम है भोग है। अब इसमें दुख आने पर जो दुखी होना और सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना क्या है, ये केवल मूर्खता है, केवल मूर्खता और कोई कारण नहीं। और मूर्खता मिटाई जा सकती है जैसे वर्णों के ज्ञान से, अक्षरों के ज्ञान से वर्ण अज्ञान अक्षर अज्ञान मिटाया जा सकता है, ऐसे ये मूर्खता बिल्कुल मिटाई जा सकती है। ये मूर्खता सुख दुख होते हैं, सुखी दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है। तो फिर कर्म का फल क्या है? कर्म का फल है परिस्थिति। कर्म किए जाते हैं वो कर्म परिस्थिति रूप से हमारे सामने आ गए, सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति, वो परिस्थिति आना है वो कर्मों का फल। कर्मों का विधान भगवान के द्वारा किया हुआ है, तो इसका फल ऐसा होगा, इसका फल ऐसा होगा भगवान के द्वारा। और भगवान किसी को दुख दे ये बात असंभव है। कोई भी अपने संतान को दुखी नहीं करता, भगवान दुखी करेंगे। मम वांशो जीव लोक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान का विधान मंगलमय होता है, सबके मंगल में। दुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय, सुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय है, और अभी मंगलमय है। दोनों साधन सामग्री, सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है, भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय भाई, विषय भोगना इस तरह का फल है ही नहीं। इस तरह का फल दोनों से ऊंचा उठ करके मुक्त होना है, इस वास्ते सुखी दुखी होने के लिए नहीं। दोनों साधन सामग्री है, सुखी से सुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है और दुखी से दुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, तो प्राप्त करने की सामग्री है। अब दूसरा कोई दुख नहीं देता, ये इस बात पर विशेष ध्यान दें आप। अमुक ने मेरे को दुख दिया, मुझे कोई ये नहीं है। परमात्मा के सामने कैसे दे सकता बताओ, हमारे दुख कैसे दे सकता है? और परिस्थिति परमात्मा की निर्मित वो आवेगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां आवेगी, और हम सुखी हो जाएंगे। आपको एक बात बता रहे विशेष ध्यान देने के लिए, आज दिन आपने जितना सुना है समझा है पढ़ा है इतिहास में, कोई एक आदमी का ऐसी इतिहास बता सकते हो कि जो जन्म भर सुखी रहा हो? तो इतनी जो सृष्टि अरबों और अरबों वर्षों से चली आ रही है उसमें एक ही आदमी सुखी नहीं मिलेगा। मिले तो आप आज बता दो, फिर खोज कर बता दो, इतिहास देख कर बता दो कि भाई इस दिन में इस जीवन में कभी दुख नहीं होगा। अगर अपने करने से सुख हो जाता तो दुख कोई क्यों रहने देता, दुख क्यों रहता, सुखी हो जाता। तो आज दिन तक एक भी अपने उद्योग से सुखी नहीं हुआ, मानो सुखदायी परिस्थिति उसकी नहीं रही। सुखी दुखी होने तो मूर्खता फल है। तो सुखी हरदम रह सकता, मस्त रह सकता, आनंदित रह सकता है, परंतु कोई भी दुखी नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं। परिस्थिति दुखदायी ना आई हो ऐसा कोई भी प्राणी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म निर्मित है, कर्म में सुख दुख जाति आयुर्भोग आएगा। परंतु दुखी होना सुखी होना ये केवल सिर्फ मूर्खता के और कोई कारण नहीं, वो मूर्खता सर्वथा मिटाई जा सकती है। आप हम कोई भी, मैं मिटा लू, आप मिटा लो, कोई मिटा लो, वो मूर्खता बिल्कुल मिटाई जा सकती है। हरदम मस्त रहता, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है, सुखदायित्व से आ जाएगी। आतंत्र योग दर्शन की व्याख्या में एक श्लोक आता है, प्रज्ञा प्रासाद मारूह कसोच सोच तो जनान भूमिष्ठा निवसैरस्थ सर्वान प्राज्ञोनु पश्यसी। ऋतु पर आता तो प्रज्ञा सूत्र आया है योग दर्शन में, वो समाधि होने पर उसको ऋतु भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतु भरा प्रज्ञा, प्रज्ञा नाम बुद्धि, ऋतम मनु सत्यम विभर्ति, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। वो प्रज्ञा प्रासाद मारी, प्रज्ञा रूपी एक हवेली पर चढ़ करके वो प्राज्ञ पुरुष सबको देखता है। कैसे कि भूमिस्थान वो शैलस्थ, एक पर्वत के वो बहुत बड़े पर्वत पर खड़ा पृथ्वी पर खड़े लोगों को देखे, ऐसे वो सब लोगों को देखता है। प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ करके वो एकदम प्रज्ञा को प्राप्त करके भूमिस्थान एवं शैलस्थ, जैसे पृथ्वी के ऊपर खड़ों को पर्वत पर खड़ा देखता है, उस पर कोई बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां हुई। नीचे भूमिस्थान एवं शैलस्थ, भूमिष्ठ भूमि में स्थित है, वो ऐसा देखता है, वो शैलस्थ है, शैल पर्वत पर, वहां कोई आवाज आती नहीं, कोई सुधो का आता नहीं, तो सुध उसके पास पे नहीं आता, ऐसी प्रज्ञा में रहती है। उस प्रज्ञा को समाधि से बताया है पातंत्र योग दर्शन में, और जगह हमारे को विचार से मिलती है एक प्रज्ञा, विवेक विचार से, तो विचार और साधन से ऐसी स्थिति मिलती है, वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति उसके पास नहीं आती, सामने आएगी, जीवन में आएगी, परंतु उसको कुछ भी आंस नहीं पहुंचा सकती। जैसे शैलस्थ है वो भूमिष्ठों की तरह है, भूमि पर स्थित वालों की तरह, सुख दुख कैसे होगा, वहां पहुंचती ही नहीं, वहां चीज वो पहुंचती ही नहीं। ऐसी स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। तो दुख देने वाला दूसरा है, यही कुबुद्धि है। कभी भी जीवन में अमुक ने दुख दे दिया ऐसा कभी न माने, वो दुखी नहीं होगा। दूसरा दुख देता है ऐसा मानेगा तो सुखी कभी नहीं हो सकता, कभी, क्यों, दूसरा तो रहेगा और सबके सब सुख देंगे अनुकूल, ऐसा असंभव है। तो दूसरा दुख देगा वो सुखी कभी नहीं होगा। अभी शंका हो तो बोलो भाई, जब तक दूसरा दुखी देने वाला दुख देने वाला होगा वो सुखी कैसे होगा? दूसरा तो मिट नहीं सकता, दूसरा तो रहेगा, दूसरा अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह का होगा। तो दूसरा दुख देता है वो सुखी कभी हो सकता है? खूब विचार कर लेना, कभी सुखी नहीं हो सकता कि दूसरा मौजूद रहेगा, दूसरा अनुकूल, सबके सब अनुकूल हो जाए, किसी के जीवन में हुआ है क्या? भगवान राम जी के जीवन में नहीं हुआ, सबके सब सुखदायी, कोई नहीं हो सकते। तो दूसरा दुख दे दे ऐसी बात नहीं है, कैसे दे देंगे भगवान के रहते हुए, और अपने उद्योग से कैसे सुखी हो गया? तो अहंकृत वृथाभिमान है, और दूसरा दुख देता है ये क्या है, क्या है मरा कुबुद्धि। और वो ददाती थी कुबुद्धि, ऐसा कुबुद्धि है, कुछ बुद्धि बहुत खराब बुद्धि है, और बुद्धि को शुद्ध कर सकता है आदमी, और क्या, बुद्धि शुद्ध कर, निर्मल बना सकता है, अंतःकरण को निर्मल बना सकता है, शुद्ध बना सकता है, तो कुबुद्धि है। और मैं सुख जाऊंगा, मैं उद्योग कर धन कर दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, तो ये सुखी होने का है नहीं, संभव नहीं। कुबुद्धि मिटा दो, ना तो ये अभिमान रहेगा और ना दूसरे ने दुख दिया ये रहेगा, कुबुद्धि का फल है ये। और कुबुद्धि मिटाने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, तो दुख देने वाला कोई नहीं है तो क्या है? ये दुख सुख क्या, ये परिस्थिति आती है पहले हुए कर्मों के फल का एक नाश करने के लिए, एक प्रवाह आरूप से कभी सुखदायी कभी दुखदायी ऐसा प्रवाह है। ये बेचारा ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है, ये तो निजकृत कर्म भोग सुख भोग से वो प्रवाह बहता है। उसको कोई सुखदायी मान लो, कोई दुखदायी मान लो। गंगा जी के बाढ़ में कई गाय बह गई, कई ब्राह्मण गांव गांव बह गए और कईयों का जीवन मिल गया, खेती हो गई, मनोमन ध्यान हो धान हो गया, अच्छा हो गया। तो गंगा जी ने किया नहीं, होता है गंगा जी के प्रवाह से होता है, ऐसे विधान के प्रवाह से होता है। इसमें सुखी दुखी होना गलती है। अब उसमें निजकृत कर्म भोग सब रहता, इसमें भी एक रहस्य की बात है। कर्मों से परिस्थिति आती है और सुखी दुखी होता है वो कुबुद्धि से। सुखी होना भी कुबुद्धि है, दुखी होना भी कुबुद्धि है। मैं सुख कर लूंगा और दुख मिटा दूंगा, ये वृथाभिमान है, बिल्कुल वृथाभिमान है। ऐसा हो तो कोई न कोई तो जीवन भर में सुखी आता सुखदायी परिस्थिति होती, तो ये वृथाभिमान है। तो क्या करे कि सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री है। सुख सामग्री मिल जाए तो उसको चाहिए कि जिसके सामग्री नहीं है उसकी सहायता करे। सुखदायी सामग्री सबकी सेवा के लिए मिली है और दुखदायी सामग्री भोग के लिए नहीं है। दुखदायी सामग्री सुख इच्छा मिटाने के लिए है, ये सावधान होने के लिए। दुखदायी परिस्थिति जितनी प्राणी के हितकर है उतनी हितकर सुखदायी परिस्थिति नहीं है। तो दुखदायी परिस्थिति है महान हित करने वाली है। आप इतिहास देखो तो बड़े बड़े संत महात्मा हुए ज्यादा दुखदायी परिस्थिति में ही हुए, सुखदायी परिस्थिति में कम हुए। दुखदायी परिस्थिति में बहुत अच्छे संत महात्मा हुए दुखदायी परिस्थिति में। तो वह केवल अपनी उन्नति करने के लिए दुखदायी परिस्थिति आती है। निजकृत कर्म है, अपने किए कर्मों का फल है, वो परिस्थिति विधान करने वाले परमात्मा है जो सूर्यम सर्वभूताना मात्र प्राणी के सूर्य, तो वो आती है पर साधन सामग्री। तो दुखदायी में सुख की इच्छा का त्याग करे और सुखदायी सामग्री में उपकार करे, सेवा करे। दुनिया दीन दुखियों की सेवा करे। तो सुखदायी सामग्री से नहीं मेरे भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए सुखदायी परिस्थिति नहीं, दुखदायी परिस्थिति दुखी होने के लिए नहीं, त्याग के लिए है। भीतर से त्याग, हम सुख भोगना है ही नहीं तो दुखदायी क्या करेगी बताओ। हमें सुख भोगना ही नहीं, अब दुखदायी परिस्थिति क्या करेगी। रुपयों का हमें सुख लेना ही नहीं है तो रुपया नहीं हो तो क्या होगा, कैसे दुख होगा। हमें अनुकूलता भोगनी नहीं है तो अनुकूलता और कैसे सुखी बना देगी। हमारी परिस्थिति जितनी दुखदायी आ गई वो त्याग के लिए, हृदय से त्याग। और दुखी नहीं, दुख हम क्यों, ये दुखदायी ठहरता नहीं, दुख ठहरता ना सुख देता। आगमा पाई नो अनित्या भगवान ने कह दिया, महान मंत्र है आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो अनित्या। मैंने तो कई बार कहा है आप दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो मानसिक जप कर लो, आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो अनित्या। आने जाने वाले है अनित्य, आने जाने वाले कभी रहने वाले नहीं। अलग हम दिन रात्रि बदली है, सुख स्थानांतरम दुखम, दुख स्थानांतरम सुखम। ये दोनों कैसे हैं, दिन रात कैसे किसी को कोई मिटा नहीं सकता, इस तरह से ये आते रहते हैं। तो आगमा पाई नो अनित्य स्थान स्थिति स्थिति से क्या होगा, यंग है ना व्यथित, ये सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते स्वामृतत्व ही कर पाते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। तो सुख सामग्री उपकार करने की सेवा करने के लिए, दुखदायी सामग्री सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए, सुख की इच्छा कर भोग का दोनों का त्याग कर दे, सुखदायी में भोग का त्याग कर दे, दुखदायी में इच्छा का त्याग कर दे। जय राम जी। अब बात हो तो बोले कोई सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। नारायण नारायण।
राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी 22 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम
नारायण 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 राम 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 राम। हरा कृष्ण वरवंदम परम ब्रह्म राक्षसे सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेशैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवस्तुं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितपरान्नवनीरभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तु मां न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गुरुदेव्यो नमः।
नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण, क्या सुनाऊं बोलो। अच्छा
सुख दुख का जो है ना वो मारी मूर्ख का जब सुखी दुखी हुआ
मारी बात सुबह की बात मेरे भी सुबह वाली बात याद आई। मेरे पर रखी ना सारे मन में जो कहो तो मेरे बात सुबह वाली याद आई। अब दोनों बात हो गई, सारी भी होगी मारी भी होगी। सुबह बात चली थी जिसमें मैंने ये कहा, याद है उस लोग याद है, मैंने कहा लक्ष्मण जी महाराज की और निषाद राज गुह की दोनों की बातें हुई अध्यात्म रामायण में। उसमें लक्ष्मण जी महाराज ने कहा सुख से दुख से को पिदाता। तुलसीकृत रामायण में भी आता है कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, कृत कर्म कर्म अपना किया हुआ भोग है सभी। ये बात भी तुलसीकृत रामायण में भी आती है और अध्यात्म रामायण का उसी समय का ये श्लोक है सुखस्य दुखस्य को विदात न को विदाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहंकृतो में वृद्धाभिमान मैं करता हूँ ऐसा वृद्धाभिमान अहंकारों में बसाभि मैंने स्वकर्म सूत्र ग्रसित हो ही लोक अपने कर्मों से संपूर्ण लोग ग्रस्त ग्रसित है। अब आप लोग ध्यान देकर सुने एक बात बताता हूं बहुत मार्मिक बात। अमुक आदमी ने मेरे को दुख दे दिया ये जो बात है अपनी धारणा उसको भगवान कुबुद्धि कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज। सिद्धांत की दृष्टि से ही कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। दूसरे का दिया हुआ दुख मेरे को अमुक अमुक ने दुख दे दिया बिल्कुल कुबुद्धि है। ये सिद्धांत से बात करूं जितनी शंकाएं अभी लिख लो, अभी तो मेरे को बोलने दो और कोई शंका होता है बार बोल दो, इसमें कोई शंका होता अभी बोल दो, पर मैं बोलने लगूं पर से कृपा कर थोड़ी देर ठहर जाए घर मिनट नहीं है 20-25 मिनट है इतने मिनट से थोड़ी क्षमा रखो। अरे बार बोलने में जितना बोलना जो बोल लो बार खुल नहीं दूंगा बार पर अब कहूं जिसमें बीच में मत बोलना नोट कर लो लिख लो फिर पूछ ले ठीक है ना। तो अमुक आदमी ने दुख दे दिया इस पर मैंने ये सुबह कहा था कि परमात्मा परम दयालु है परम हितैषी है परम सुहृद है और अंतर्यामी है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए परमात्मा की जानकारी में कोई भी किसी को दुख दे सकता है
एक बात। दूसरी बात ये मैं जोर से कहा था कि दूसरा दुख देता है तो उसका दुख कभी मिटने का है ही नहीं, कभी नहीं मिटेगा, क्यों? दूसरा तो कोई ना कोई रहेगा। कहीं जाओ, किस जुड़ी में जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, दूसरा तो रहेगा। दूसरा दुख देगा तो दुख कैसे मिटेगा उसका? दोनों बातें बड़ी प्रबल है, आप लिख लो। नहीं, एक तो परमात्मा दयालु है और सर्व सुहृद है और अंतर्यामी है और सर्वसमर्थ है। लिख लो, नाम लिख लो, ये परमात्मा की विशेषण। ऐसे परमात्मा के राज्य में उस परमात्मा के जीते जी कोई किसी को दुख दे सकता है? परमात्मा के विशेषणों का आप ध्यान देना, मैंने जो विशेषण रखे इस पर ध्यान देना। उस परमात्मा के रहते हुए कोई किसी को दुख दे सकता है? अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, परम हितैषी है, मात्र जीव के सुहृदं सर्वभूतानां लिखा है, मनुष्याणां नहीं है, भक्तानां नहीं है, ज्ञानी नाम नहीं है, प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं भगवान। स्वयं अपने मुख से कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञातवान् शांति मिश्रित, सबके सुहृद है। तो सबके सुहृद रहते हुए उसको कोई दुख दे सकता है? भगवान सुहृद है जिसके, प्राणी मात्र को, तो दूसरा दुख दे नहीं सकता भगवान के रहते हुए। और दूसरी बात बताई कि दूसरा दुख देगा उसका दुख तो मिटेगा नहीं, कभी कहीं जाओ भले ही, क्योंकि दूसरा कोई ना कोई रहेगा ही, अब वो दूसरा कैसे मिटेगा? तो उस आदमी का दुख मिट नहीं सकता कभी, ये मैं सुबह कही। अब जाने क्या क्या बताऊं, ऐसी विलक्षण बातें हैं। हर हालत में हरेक मनुष्य अपना उद्धार करने में सर्वथा समर्थ है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी संप्रदाय का हो, परंतु अपना उद्धार करने में मनुष्य मात्र सदा स्वतंत्र। भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, दरिद्री हो, धनी हो, कमजोर हो, कितना ही कैसे चतुर हो, चाहे मूर्ख हो, अपने उद्धार करने में सबके सब समर्थ हैं पूरे। अब आप भी शास्त्र पढ़े हुए नहीं मानेंगे, परंतु आप बात है, फिर पूछ लेना, अभी तो आप चुप रहो, फिर पूछ लेना, तो अपना सभी कल्याण कर सकते हैं। अब कल्याण कैसे करें? हमारे सामने सुख और दुख दोनों आते हैं, तो सुख और दुख आते हैं, ये सुख और दुख क्या चीज है, इस पर विचार हुआ। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, दूसरा दुख देता है कुबुद्धि है, और मैं कर दूंगा सुख, ये वृथाभिमान है, रामायण माया। तो अहंकारो मिति वृथाभिमान, मैं सुख कर दूंगा। तो सुख दुख कोई देने वाला नहीं है, तो क्या है ये? तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए कर्मों के फल भोगते हैं, फल भोगते हैं। मैं फिर प्रार्थना करता हूं, मेरी बात का विशेष ध्यान देना। तो पहले किए हुए कर्मों का फल देते हैं। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, उसका फल कर्मों के किए हुए फल को जन्म होगा, आयु होगी और भोग होगा, तीन पद आए वहां। तो जन्म होगा, आयु होगी, भोग, भोग नाम किसका है? सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। अब सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा, सुख और दुख दोनों सामने आ जाए, इसका नाम है भोग। अब एक बात बड़े रहस्य की है, फिर कहता हूँ आप ध्यान दे, बात बहुत मार्मिक काम की है। सुख दुखदायी परिस्थिति सामने आवेगी, सुख अच्छा काम किया है तो सुखदायी परिस्थिति आवेगी,
बुरा काम किया है तो दुखदायी परिस्थिति आवेगी, ये तो है कर्मों की बात, दुखी होना। विधान है वो परमात्मा का है, अपने किए हुए कर्मों के फल का विधान परमात्मा का किया हुआ है, वो परमात्मा कैसे किसी को दुख देगा। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आपके सामने आवेगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुख दुख देने के लिए परिस्थिति के पास में समय भी नहीं है, कब दे। वो बिचारी चलती है अपनी, है जो की त्यों चली जा रही है, आपको छूती नहीं कहती नहीं, परिस्थिति चली जा रही है, वो सुख दुख कैसे दे सकती है। आप सुख दुख मान लेते हो तो मान लेने में केवल मूर्खता है, विचार से देखा जाए तो सुख दुख देता ही नहीं। इसलिए सत्संग से, सद विचारों से, सद्भावों से आदमी सदा मस्त रह सकता है, मौज में रह सकता है, क्योंकि परिस्थिति से दुख देती ही नहीं। तो दुख तो उसको पकड़ करके आप कर रहे हो, कैसे कि आपके अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें आप सुख मान लेते हो, प्रतिकूल परिस्थिति मिले उसमें दुख मान लेते हो, ये गलती होती है आपकी। तो वो जो दुख सुख मान लेते हो ये होती है गलती, वास्तव में परिस्थिति वो तो अपने देकर चली जा रही है बेचारी। रात के बाद दिन, दिन के बाद ये चलता है, ऐसे ही लिखा है, ये दोनों ही सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अलंघ्यम दिन रात्रिवत, दिन रात की तरह सुखदायी परिस्थिति, परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति, ये तो आती रहेगी, ये तो आवेगी। दिन रात्र में कोई फर्क पड़ता है, दिन बाद रात आ जाए, रात के बाद दुख आ जाए, दिन आ जाए, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख आती रहेगी। मनुष्य के लिए कल्याण की बात खुली है, यही तरु यह तनु करो फल विषय है भाई, यहाँ भोग इसका विषय नहीं है, मनुष्य के लिए भोगने के लिए अवकाश नहीं है, ये तो अपना कल्याण करे, केवल कल्याण करे, भोग भोगने के लिए नहीं है। कल्याण कैसे करें कि सुखदायी देह है, वे सुख दो दो तरह का, दो तरह का सुख है, दो तरह का दुख है, ये सुबह नहीं कही थी, अभी याद आ गई स्पष्ट करने के लिए। एक तो सामग्री हमारे पास बहुत, धन संपत्ति वैभव, बेटा पोता मकान, या बहुत अनुकूल सामग्री हो, इसको देख लोग कहते हैं सुखी है। एक सामग्री नहीं है तो कहते बेचारा बड़ा दुखी है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसी दशा है तो दुखी है। एक तो सुख दुखी है परिभाषा है, एक सुखी दुखी है कि मन में हरदम प्रसन्न रहता है, कभी दुखी होता ही नहीं, उसको भी हम सुख कहते हैं। कभी मन में नाराज होता है, दुखी होता है, तो वो सुखी दुखी कहते हैं। तो हृदय में जलन हो इसका नाम दुख है, और हृदय में प्रसन्नता इस नाम नाम सुख है। एक सुख सामग्री का नाम सुख है, एक दुख सामग्री का नाम दुख है। तो सामग्री वाला सुख दुख तो परिस्थिति का है, हृदय में सुख दुख होना है, ये है मूर्खता का फल। तो हृदय में सुख दुख है, मूर्खता का फल तो मनुष्य का क्या है, मूर्खता गमा देना, ये मनुष्य का उद्योग है, मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है खास। जैसे किसी लिपि का हमें ज्ञान न हो, उस ज्ञान को, उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम लिपि सीख सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं, ऐसे ही सुख दुख हमारे को है ही नहीं, इस विद्या को सीखने का ये मौका है। कोई सीख लो, सबके लिए खुली है, जो मैंने पहले बातें कही कैसा याद नहीं हो। तो इस ज्ञान के लिए मानव शरीर मिला है, खास करके इस मानव शरीर में आकर के और दुखी नहीं होना है, सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना है। ऊंचा उठना क्या होता है कि न सुख पहुंचता है न दुख पहुंचता है। तो मैंने कहा पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में, व्यास जी महाराज उनका लिखा हुआ भाष्य, उस भाष्य में आया है पहले ही पाद के अंतिम भाग में, उसमें कहा है कि रितम भरा तत्र प्रज्ञा, इस समाधि में रितम भरा प्रज्ञा होती है। रितम भरा का अर्थ होता है रितम सत्यम विभर्ति रितम, रितम भरा सत्य को धारण वाली बुद्धि होती है। उस बुद्धि से क्या होता है कि दूजे देखो, दूजे दुखी सुखी को वो देखता है,
तो उसमें श्लोक दिया है व्यास जी महाराज ने कि जैसे प्रासाद मारी यथा प्रासाद मारी असोच सोच तो जनान, जैसे कोई बहुत बड़ी हवेली पर खड़ा हो और लोगों को देखे, इसी तरह से इसी प्रज्ञा प्रासाद पर, प्रज्ञा के प्रासाद मान मकान पर हवेली पर वो खड़ा है रिजम्बरा प्रज्ञा पर, असोच्य है और सोचित सोच करने वाले सो वो देखता है। कैसे देखता है कि भूमिष्ठान है वो शैलस्थ, जैसे पर्वत पर खड़ा है वो पृथ्वी पे खड़ा आदमी को देखता है, कोई आग में जल रहा है, कोई जल में डूब रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे दुख पा रहे हैं। तो भूमिष्ठान शैलस्थ प्रस्थान प्रागोन प्राग्ञ अनुपस्थिति, तो वो देखता है और सुखी दुखी नहीं होता, दूसरे ऊंचा उठ गया। तो दूसरे लोग तो है भूमिष्ठ और वो है शैलस्थ, सर्वान प्राज्ञ अनुपस्थिति, ऐसी प्रज्ञा होती है। तो वह सुख दुख कहाँ है बताओ, इस सुख दुख से ऊंचा गुणा कहते हैं। कर्मा शुक्रम कृष्णम योगी नाम त्रिविध मित्रेशम, ये सुबह नहीं कहा था, याद आ गया कि जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया है उनको कोई सुख दुख नहीं पहुंचता, महान आनंद में रहता है। तो कर्म तीन तरह का होता है, एक कर्म शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है, एक मिश्रित होता है। ये गीता के 12वें श्लोक में 18वें के 12वें पर खूब व्याख्या है कर्मों की, वो कर्मों को समझना हो तो वहां व्याख्या पढ़ो। पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, मिश्रित कर्म है, ये फल होता है त्रिविध मित्रे शाम, वहां दूसरों को सब तीन प्रकार का होता है। न तो सन्यासी ना अंकोचित, उसको कभी होता ही नहीं, ये गीता कहती है। तो ऐसे उनके पास में न ये संसारी सुख पहुंचता है, न संसारी दुख पहुंचता है, ये नहीं पहुंचते वहां, तो ये पहुंचते ही नहीं। जब ये पहुंचते ही नहीं तो सुखी दुख कैसे होगा, तो सुख दुख वहां पहुंचते नहीं, तो क्या सुख और दुख आता है, परिस्थिति आती। परिस्थिति कर्म निर्मित है, तो वह कर्म निर्मित है, ये है विधान भगवान का, ऐसा किया जैसी परिस्थिति सामने आ गई, अब वो सुखी और दुखी हो। एक दृष्टांत याद आ गया बीच में, नारद जी महाराज के बाल्यावस्था में माँ मर गई, सांप काट गया, माँ मर गई। वे मरने पर नारद जी कहते मैं सुखी हुआ, जहां व्यास जी से अपनी बात कहते हैं, प्रसन्न हो गया, जंगल में निकले, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो बालक की माँ मर जाए तो बालक सुखी हो जाए, दुखी होना चाहिए, दुखदायी परिस्थिति तो प्रारंभ से आ गई, माँ मर गई, बालक के माँ मर जाए इसके संबंध में क्या दुख होता है। और पर नारद जी महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, जंगल में चले गए, जागरिक वृक्ष से बैठे, झरने का पानी पिया, वहां पर ध्यान लो भागवती कथा है। तो वे सुखी हो गए माँ मरने से, इस वास्ते परिस्थिति आदमी को दुखी नहीं करती, ये मूर्खता से दुख पाता है। जब भजन की रुचि थी, माँ एक बंधन से चला गया तो मेरे भजन में बाधा मिट गई, इसमें राजी हो गए। इस वास्ते परिस्थिति सुख दुख नहीं देती, उन सुख दुख दोनों से हम उनसे उठ सकते हैं। सब भाई बहनों से कहता हूँ, सबके सब उनसे उठ सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो परोदाती को उधर अहं करो मेरी, दो ही बात है, दुख तो अमुक ने दे दिया और सुख मैं कर देता हूँ अपने उद्योग से। अगर अपने उद्योग से सुख होता तो आज दुखी कोई नहीं रहता, और दूसरे को दुख देने वाला वैसे को सुख कभी नहीं हो सकता। ये है सिद्धांत, सुबह की बात का निष्कर्ष। थोड़ा सा मैं समय देता हूँ, अब पूछो, पूछने के लिए समय देता हूँ, अभी हमारे समय में 8-10 मिनट कम है, तो अब पूछो।
कोई आदमी किसी के दुख देने के लिए पीछे ही पड़ जाता है तो वो निमित्त है कि नहीं दुख में?
वो तो निमित्त होता है मूर्खता में, दुख तो उसको मिलने वाला है ही,
वो पीछे ही पड़ा है दुख देने के लिए, तो क्या
तो पीछे पड़ा है तो पाप लगेगा, महान दोष लगेगा, बड़ा दोष लगेगा उसको। दुख देने के लिए जो लगा है उनको किसी तरह फंसाने के लिए लगा है, भयंकर पाप लगता है और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। जिसको दुख मिलता है उसका तो प्रयास का परमात्मा के रहते हुए पीछे पर दुख दे देगा, परमात्मा की जीते थी तो करनात्मा कभी मरते हैं, परम सूत के रहते हुए दुख पर दे देंगे, पीछे पड़ा वो दे सकता है। पर इसमें कहते हैं अन्याय करते हैं हमारे पर, अन्याय करने वाला करता है, अन्याय होता है, ये लोग कहते हैं गलती करते हैं। मैंने एक बात सुनाई थी कि गुजराती एक पुस्तक कोई थी मुझे याद नहीं, भक्तों का चरित्र था, उसमें लिखा है कि एक बैठा बाबा अपने भजन कर रहे थे नगर के किनारे जंगल में, तो वहां से कई आदमी धन लूट करके भाग रहे थे, पीछे पुलिस पड़ी है, उन देखा मारे जाएंगे, तो बाबा जी के पास धन रखी और वे छिप गए जंगल में, आए जो लगे मारने, तो जिंदगी क्या तमाशा है, ये मार कैसे पड़ती है। तो वो बोलो बधू तू जाने से, हे नाथ आप जानते हो, सब आप जानते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने मेरी जान में किसी को दुख दिया नहीं, मार पड़ रही है तो मैं जानता नहीं कि किस कर्म का फल है, हे भगवान आप जाओ, हमारे को इसका पता नहीं है। तो कर्मों का फल होता है बिना कसूर मार पड़ रही है इतने पर भी क्या कह रहे हैं कि बधू तो जाने थे, दोष नहीं दिया कि बिना कसूर तुम क्यों मारते हो। तो जिस पर मार पड़ती है उसके धैर्य से ऐसा ही ऐसा कि दुख देने वाला तो दे नहीं सकता बेचारा, तो मूर्खता से दुख पा रहे। इस वास्ते कितना ही पीछे पड़ जाए, कितना ही दुख दे, मैं एक बात और कहता हूं, दुख देने वाला दुख नहीं दे सकेगा, सुख देगा। मैंने देखा है ऐसा, मेरे पर देखा है, वो करना चाहता है अनिष्ट और हुआ है हमारा इष्ट, ये मेरे जीवन की बात है। अनिष्ट करना चाहता है, हमारे इष्ट होता है, ये हुआ है हमारे, मैंने भोगा, देखा, अनुभव किया, बिल्कुल मान्य उड़ो है, तभी तो मिटे नहीं, तो मिटे कैसे, और सुख दुख हो तो मिटेगा नहीं, ना भाव विद्युत है, सत सत का अभाव होता नहीं तो दुख मिट सकता ही नहीं, केवल मान उड़ा इस बार छोड़ दो। छोड़ते क्यों नहीं, आप छूटते क्यों नहीं, हम कहते हो तुम छोड़ते क्यों नहीं, आप ही तो पकड़ते हो छूटता नहीं कहते हो, मैं कहूं छोड़ते नहीं, आप छोड़ो पकड़ रहा तो मेरे कान पकड़ लेना आकर के, आपने छोड़ दिया कैसे दे देगा, देखो उसके मन में वह तो दुख देने का भाव रखने वाला दोषी बनेगा जरूर, वो पापी बनेगा जरूर, बनेगा बनेगा बनेगा, जिसमें संदेह नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत खराब हुई है, दुख तो दे सकेगा कि नहीं, पाप जरूर लगेगा। एक बात और मन में आई थी गीता जी को लेकर के, कि जो कर्तृत्व अभिमान भी माना हुआ है, अहंता ममता भी मानी हुई है, ये है नहीं, ये मेरे भजन ध्यान करते हुए मन में आई थी। अभी ये सुख दुख की बात चलाओ,
कहते हैं जब तक शरीर का संबंध है तब तक तो सुख दुख रहेगा ही, फिर मूर्खता का फल ऐसे कैसे माने।
अच्छा सुख दुख क्या होता है बताओ, सुख दुख के मैंने दो तरह बताया, इसके अनुकूल परिस्थिति, अच्छा
शरीर के रहते हुए अहंता ममता तो रहेगी
नहीं, रहेगी अभी अभी नहीं, अभी छोड़ो मत, और समय में पूछता, ये और समय में पूछना दूसरा विषय, मत छेड़ो, तो आद आएगी, मैंने कह दी ये बजे छेड़ो मत, और समय में खूब समझा दूंगा, कह दे रहा, मेरी बात है मन में जैसी, मैं सुना दूंगा। गीता जी के श्लोक याद आए मेरे मन में, भजन ध्यान स्मरण नित्य नियम करते हुए पाठ, भाई बात गीता जी के अनुसार, फिर पूछना, अब सुख दुख में पूछो, अभी इसमें पूछो, अपन जो प्रसंग चल रहा है, ये कैसे मिटेगा, ये बातें बहुत है, इनको उपाय भी मेरे को बहुत याद है, पुस्तकों में बहुत पढ़ा है, उतना याद नहीं है, जितना पढ़ा है उतना याद नहीं है, पर तुम्हारे समाधान के लिए काफी है। अब बोलो, अब शंका बोलो। सुख दुखदाई परिस्थिति है वो अपने हाथ की नहीं है। अब बताऊ एक भूल अपनी, बहुत बड़ी भूल, अपने जिससे सुख दुख मिटे उस उपाय को न करके परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं, सर्वथा निष्फल है। जितना उद्योग होता परिस्थिति निरंतर धनवान बन जाए, रोगी है तो निरोग बन जाए, अपमानित तो सम्मानित हो जाए, निंदनीय है तो प्रशंसनीय हो जाए, ये परिस्थिति बदलने का उद्योग है, बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि अहंकारों में वृथाभिमान है, कर नहीं सकोगे आप, इसको बदल नहीं सकोगे आप, जो जो होने वाला जो उसे। इस वास्ते परिस्थिति न बदल करके एक मार्मिक बात बताता हूं, परिस्थिति का सदुपयोग करो, जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग। कैसे बुखार आ गया, घाटा लग गया, लोगों ने अपमान कर दिया, हम कैसे करें, सदुपयोग क्या है, कि रोग हो गया तो आपके पाप कटेंगे, अपमान होगा तो पाप कटेंगे, घाटा लगा तो आपके पाप कटेंगे, आपके बहुत लाभ की बात है, उधर ध्यान नहीं है आपका। कोई कांटा निकाल है और हमारे पीड़ा होती है तो कांटा निकालने से पीड़ा तो होती है, कांटा निकलता है, ये पीड़ा मामूली है, कांटा निकलता है कितना बड़ा भारी काम हो रहा है। ऐसे आप पाप नष्ट होते हैं, सब साधन सामग्री में वो पाप ही नष्ट होते हैं, इतनी बात तो और जगह घनी जगह मिलेगी। मेरे को संतों से बातें मिली है कि पाप नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, समझे, पाप नष्ट हो ही जाता भोगने से, आप साफ हो जाएगा, बिना चाहे रोते रहे तो भोगो तो भी हो जाएगा, परंतु उनका सदुपयोग करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदाई का सदुपयोग क्या है, सेवा करना, अपने पास सामग्री, उसने जिसके पास सामग्री नहीं है उसको सुख कैसे पहुंचे ऐसे करना है, वही वास्तविक उद्योग करना और वही सुखदाई परिस्थिति का उपयोग है। दुखदाई परिस्थिति का कि सुख की आशा नहीं रखे, सुख की आशा और सुख का भोग, ये गलती है मनुष्य की। सुखदाई परिस्थिति में सुख का भोग करता है, गलती होती है, और दुखदाई में सुख की आशा करता है, ये गलती होती है। ये गलती मिटाना सत्संग का काम है, गलती मिटाना सत्संग का काम है, ये बात तो उससे ये गलती मिट जाएगी। अब पूछो, प्रश्न पूछो, इसी में पूछो, दूसरा मत पूछो, सुख दुख की परिस्थिति में पूछो। मेरे मन में इतनी प्रसन्नता होती है इस बात को लेकर कि मनुष्य को ऐसा मौका मिला है किसी से वो अपना कल्याण कर ले, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाए, तुच्छ भोगों में फंस करके समय क्यों बर्बाद कर, यार मन सा भोग मिला नहीं, आज दिन तक किसी के मन चाही बात हुई नहीं। एक व्याख्यान सुना, बात आ गई बीच में याद, एक व्याख्यानदाता ने कहा कि मन चाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, आप कैसे कर लोगे।
भाई पूछ रहे हैं, एक दुख देता है सब प्रतिशोध करने की मन में आती है तो क्या करना चाहिए।
अपनी ये प्रतिभावना थी गलत है, हमारी भूल है कि हम बदला लेना चाहते हैं। बदला क्या लें, हमारे कर्मों का जो फल है वो भुगता कर हमारे को पवित्र कर रहा है। बदला हो तो सेवा करो, आपको अगर बदला चुकाना हो तो उसकी सेवा करो सबसे पहले, अधिक पाप रूपी कर्म को दूर करके आपको निर्मल बना रहा है। जो दुख देने की चेष्टा करता है आपके पापों का फल देकर आपको शुद्ध कर रहा है, उसका बदला लो तो सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से किस रूप से सुखी बनाओ, आपका उपकार कर रहा है।
को सदुपयोग कर लो तो ठीक है, लेकिन देखो प्रतिकार या प्रतिकूल परिस्थिति यदि आ गई तो अगर घाटो लाग गो तो देखो प्रतिकार तो फिर करना ही पड़ेगा।
वर मना में कभी करते ही नहीं, पर प्रतिकार करो, धन कमाओ, धन का सदुपयोग करो, कोई विपरीत परिस्थिति न आवे आप रखो, परंतु उनको दूर कर दोगे ये हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने के लिए मना करते, कर्मण्येवाधिकार से कर्म करने के लिए मना करता ही नहीं कभी, करते भी कर्म का पालन करो कभी नहीं मना करता, करो, परंतु आप सुखदायी परिस्थिति बना लोगे ये हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने की मना ही नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, फल का विचार करता हूँ, फल कभी आपके अधिकार की बात नहीं है। करते भी कर्म करना चाहिए खूब डट करके अच्छी तरह से, उसमें कभी नहीं सोखना चाहिए, परंतु किसी को दुख देना नीचा दिखाना ऐसी जो धारणा है ये महान गलत है, और भयंकर दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकेगा नहीं कभी। नारायण नारायण।
डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, कहीं भी संयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए, कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए, जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए, धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए।